ओम शांति। आज बाप दादा अभी भी इसी जन्माष्टमी की लहर में बच्चों को बार बार अपना लक्ष्य रिपीट करवाया है, जैसे बाबा कहे डॉक्टर या बैरिस्टर कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर या बैरिस्टर बनाऊंगा, ऐसे मैं कहता हूं मैं तुम्हें राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूं। आज बाबा ने अनेक बार प्रिंस को याद किया है। प्रिंस का प्रिंस क्यों कहा? बाबा कहे ये इस दुनिया के प्रिंस भी श्री कृष्ण के मंदिर में तो जाते होंगे, उनकी पूजा करते होंगे, तुम तो प्रिंस के भी प्रिंस। दूसरा कहा जब तुम भगवानुवाच्य बोलते हो तो शिव बाबा तो दिखाई पड़ता नहीं, इसलिए समझते हैं ये ब्रह्मा ही बोल रहा है, इसी के लिए ये लोग भगवानुवाच्य बोल रहे हैं, इसी को ही भगवान मानते हैं। लेकिन समझते हैं इसको गुरु ने सिखाया होगा। अगर गुरु ने सिखाया तो लास्ट तक भी ये ब्रह्मा बाबा जो हैं वो श्री कृष्ण की अर्थात नारायण की भक्ति करते थे। उन्हें ये पता नहीं था कि श्री कृष्ण के अंत के जन्म वाली मैं आत्मा हूं। शिव बाबा कहते हैं ये मैंने उन्हें बताया, मैंने उनके द्वारा बोला, इसलिए भगवानुवाच्य है। जब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तब ये भी पढ़ता है, जब मैं तुम्हें सुनाता हूं तो पहले ये सुन लेता है। तीसरा बाबा ने कहा लोग भगवान से क्या वरदान मांगते हैं, धन दो पुत्र दो कहते हैं ना। बाबा कहे अभी तुम्हें ये सब मांगने की दरकार नहीं। क्यों दरकार नहीं? क्योंकि अभी इतना समय नहीं है। जो तुम्हारा बेटा बड़ा हो और तुम्हारी प्रॉपर्टी संभाले, अभी तो विनाश सामने खड़ा है, अंत का समय है। तब बाबा ने शेर की कहानी सुनाई। कहते हैं शेर आया, शेर आया, जब सचमुच आया तो सब बेपरवाह थे। फिर बाबा ने एक व्यवहारिक बात बताई कि अगर तुम्हारा परिवार ज्ञान में नहीं चलता है तो उसे डायरेक्ट ऐसा नहीं कहो कि भक्ति नहीं करो, यह भक्ति दुर्गति है, यह भक्ति से कुछ प्राप्त नहीं है। नहीं, उनके सामने अगर फॉर्मालिटी से हाथ भी जोड़ा या पूजा भी कर दी तो ये कोई पाप कर्म तो नहीं है, उनको खुश कर दो। लेकिन साथ में धीरे धीरे उनको ज्ञान सुनाते रहो, एक दिन उनको समझ में आ जाएगा। और विशेष शिक्षा दी बाबा ने, जो भी कार्य करो श्रीमत अनुसार करो, राय लेकर करो, क्योंकि श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। तो अब सुनते हैं सोमनाथ बाबा का, आज सोमवार है ना, सोमरस। हमारा सोमरस कौन सा है? मुरली। सारे रस इस मुरली में है। बाबा की सारी पालना, सारी शिक्षा, सारी सावधानियां, सब कुछ इस मुरली में है। आज है 7 सितंबर 2026। मीठे बच्चे, तुम यहां श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। ये कम बात है? प्रश्न है, बाबा जब भगवानुवाच्य शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूंझ जाते हैं, क्यों? बच्चे कैसे मूंझेंगे? मूंझेंगे अभी? बच्चे तो जानते हैं ना कि पढ़ाने वाला कौन है। उत्तर है, क्यों मूंझते हैं बच्चे? क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वो समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानु वाच्य बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। बाबा कहते ये वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूं। वंडरफुल बात है ना। शिव बाबा परम धाम से आते हैं और ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठ करके हमें पढ़ाते हैं। ओम शांति। भगवानुवाच्य, भगवान क्या कहते हैं? ये भगवानुवाच्य किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते हैं भगवानुवाच्य। ब्रह्मा बाबा सुना रहे थे तो समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा के लिए ही भगवानुवाच्य कहते हैं। अभी भी कई समझते हैं कि ये लोग इसी को गुरु मानते हैं, इसी के फॉलोअर्स हैं। लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं ये सिर्फ तुम जानते हो। ये कौन बैठा है ब्रह्मा बाबा के अंदर? कौन बैठा है? भगवान कहाँ है? ये नई बात है ना, इसलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन भगवानुवाच्य है जरूर। कहते हैं कि मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। नर से नारायण अथवा कृष्ण और नारी से लक्ष्मी अर्थात राधे बनाने के लिए योग और ज्ञान सिखाता हूं। अब ये सब सुबह सुबह पढ़ के हम क्या बन रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इनसे और क्या चाहिए? इतनी ऊंची पढ़ाई का लक्ष्य है, इतना ऊंचा पद है, और क्या चाहिए? चाहिए कुछ? उसमें सब कुछ आ गया। तुमको हम राजाओं का राजा, प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूं। प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे ना। विकारी प्रिंस निर्विकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करते हैं। तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूं। तो प्रिंस के प्रिंस को क्या कहेंगे? जो प्रिंस का भी प्रिंस है, श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। नॉलेज पढ़ने से ही तो बनेंगे ना। डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को कि मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूं, परंतु पढ़ेंगे तब तो बनेंगे ना। तो ये भी लक्ष्य तो बाबा देते हैं, लेकिन पढ़ेंगे तब तो बनेंगे। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति समझते हो कि राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाई के बच्चे हैं, उनों के आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है, इसलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया है। अपने जितने भी लक्ष्मी नारायण के ये बैज वगैरह होते हैं, तो लक्ष्मी नारायण के नीचे श्री कृष्ण का फोटो होता है। लेकिन बाबा ने उस समय कहा, जब हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाते थे बाबा, तो वहाँ ट्रांसलेट है ना, तो लक्ष्मी नारायण है, नीचे राधे कृष्ण है। देखा है ना सभी ने वो ट्रांसलेट का फोटो। अब बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि ये ब्रह्मा भी नंबर वन भगत था। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे, श्री कृष्ण की भक्ति की वह नारायण की भक्ति की एक ही बात है, क्योंकि वही कृष्ण बड़ा होकर नारायण बनते। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी पढ़ती है, फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। बाप कहते हैं बच्चों तुम ज्ञान चित्ता पर बैठ गोरे बनते हो, फिर काम चित्ता पर बैठ सांवरे बन गए हो। ये है कंसपुरी, और मैं तुमको कहाँ ले जाता हूँ? मैं तुमको कृष्णपुरी ले जाने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। यहाँ कोई में सर्वगुण नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है यहाँ कंप्लीट जिसमें कोई भी वीकनेस ना हो, कमजोरी ना हो, सभी प्रकार की कलाएं हो। बाबा कहते यहाँ ऐसा कोई नहीं। मैं आया हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने। बनना कैसे है? बनना है योग बल से। अब बाबा ने बहुत अच्छा बताया, बाहुबल है हिंसक लड़ाई, जो तीर कमान से होती थी, शुरू में लड़ाइयां जो राजाएं लड़ते थे वो तीर कमान से लड़ते थे और एक दूसरे साम्राज्य पर कब्जा करते थे। फिर बंदूकों और तलवारों से हुई, अब होती है बॉम्ब से। खुद कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो घर बैठे सब खत्म हो जाएंगे। फिर मिलिट्री क्या करेगी? बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों ये पाठशाला है, मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनाता हूं। आज बाबा को बार बार प्रिंस के रूप में श्री कृष्ण याद आ रहे हैं। जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था वह अब 84 जन्म लेकर कलयुग में बेघर बना है। भारत में ही उनका राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े ना। श्री कृष्ण को भगवान कहते तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा? भगवान तो निराकार है, वो है ही एक रचयिता, बाकी सब है रचना। रचयिता तो एक ही होता है। तब तो कहते हैं कि हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे तो फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे हो? तुम वर्षा एक बाप से लेते हो भविष्य के लिए, अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुख धाम में कैसे जाएंगे? पुकारते भी हैं हम पतित बन गए हैं पावन बनाने आओ, तो बाप कहते हैं जब बाबा को पुकारा कि हम पतित बन गए हैं पावन बनाने आओ, तो बाबा ने आकर के क्या विधि बताई? तो बाप कहते हैं बस मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम सब आत्माएं अब वापस वानप्रस्थ में जा सकती हो, इसलिए वानप्रस्थी हो। यहाँ कोई यंग नहीं है, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, सब क्या है? वानप्रस्थी है। क्यों? क्योंकि हम वानप्रस्थ में जाएंगे, माना वानप्रस्थ कहते भी है परम धाम में, उसी को शांति धाम भी कहते हैं, निर्वाण धाम भी कहते हैं। ऐसा कोई गुरु रास्ता बता न सके, ये ज्ञान है ही एक बाप के पास, वही पतित पावन निराकार है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो थोड़े टाइम के लिए, बस अब अंत समय है ना, ज्यादा तो है ही नहीं, अब बाकी जितना थोड़ा समय है, पूरा कल्प तो खूब विकारों के वश भी हुए, ऐशो आराम भी किया, सतयुग में राज्य भी किया, सब कुछ हो गया पूरा, अभी जो थोड़ा समय है वो सब कुछ भूलकर मुझे याद करो। मैंने इस तन का लोन लिया है, शरीर बिगर आत्मा कैसे बोल सकेगी? भगवानु वाच्य है कि मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। गर्भ में आने वाले को तो पुनर्जन्म में आना पड़े, मैं एक ही बार आता हूँ। प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए, मैं इसमें बैठ तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा आज बार बार ये पक्का करा रहे हैं कि ये ब्रह्मा बाबा के अंदर बैठकर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, ये निश्चय करो। ये तो पहले अपना जवाहरात का धंधा करता था, कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक ही बाप ने इसमें प्रवेश किया। करण करावन होने के कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? शिव बाबा है, इसको इंस्ट्रूमेंट बनाया, माध्यम बनाया। ये भी सीखता जाता है, तुम भी साथ में सीखते जाते हो। बोलते हैं तुमको, बाबा कहते हैं बोलते हैं तुमको, परंतु सुनता पहले मैं हूँ। ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं, शिव बाबा जब तुमको पढ़ाते हैं तो पहले पहले मैं सुन लेता हूँ। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूँ, परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूँ, ऐसा कभी कोई पढ़ाता नहीं है। आज तक पढ़ा इतने समय, इतने सत्संगों में गए, कितने गुरुओं के पास गए, ऐसी पढ़ाई पढ़ाई किसी ने भी नहीं पढ़ाया। डायरेक्ट शिव बाबा के महावाक्य कौन सुना सकता है? यह है पावन बनने की बात। ये संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था, स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री कुछ कम हो जाती है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। नाम ही है श्री कृष्ण पुरी, इसको कहा जाता है कंसपुरी। बाबा बाकी कहानी बनाई है श्री कृष्ण और कंस की, वो सीरियल भी बनाते हैं ना श्री कृष्ण की, कैसे उसने कंस को मारा, कैसे उसका उसने विरोध भी किया। तो बाबा कहते हैं वास्तव में कौन से कंस को मारा? विकारों रूपी कंस को मारा, देह अभिमान रूपी कंस को मारा। बच्चों को समझाया है कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आप ही छूट जाएगी। तुम कभी कोई को ऐसा नहीं कहना कि भक्ति ना करो। कईयों को होता है ना, डायरेक्ट बोलते हैं, कोई भक्ति करता है ना तो उसको सीधा बोलते हैं कि अरे तुम भक्ति नहीं करो, इससे कोई प्राप्ति नहीं है, भक्ति दुर्गति है। बाबा कहते हैं ऐसे डायरेक्ट किसी को नहीं कहो, उनको ज्ञान देना है। बाप तुमको ज्ञान दे, स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं। श्री कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था, अब नहीं है, फिर से वो भी राजयोग द्वारा बन रहे हैं। तुमको भी पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। हेवन की स्थापना करने वाला हेवनली गॉड फादर है, वही आकर नई सृष्टि रचते हैं। वो करेगा तब, वो तब करेगा, नई सृष्टि कब रचेगा? वो करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा। सतयुग त्रेता में नहीं आते, बाबा सतयुग त्रेता में नहीं आते, कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। उन्होंने कल्प अक्षर निकाल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते हैं ना भगवान युगे युगे आता है, और भगवान ने कहा मैं कल्प के अंत के संगम युग में आता हूँ। तो भी चार युग है, पांचवा है ये संगम युग। बाबा कहते अगर युगे युगे भी आता है तो युग चार हैं, पांचवा ये संगम युग है। अच्छा फिर तो पांच अवतार मानो, ज्यादा से ज्यादा कितना हुआ? अगर युगे युगे भी आता है तो पांच अवतार हुए, परंतु इतने कच्छ मच्छ परशुराम अवतार होते हैं, इतने होते हैं क्या? फिर तो कितने अवतार हो गए, फिर तो युगे युगे की बात ही उड़ गई। फिर तो युगे युगे आता है नहीं कहो। ये सभी है शास्त्रों की बातें। धर्म का नाम और भारत का नाम ही बदली कर दिया है। कैसे बदली कर दिया भारत का नाम? हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कह देते हैं। भारत का नाम क्यों बदलना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसमें भारत का नाम आता है, हिंदुस्तान नहीं आता है। उसमें भी भारत अक्षर आता है। बाप समझाते हैं कि तुमने कोई एक जन्म भक्ति थोड़े की है। कितने जन्म की है? द्वापर से की है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। जिस शिव बाबा ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। तो पतित शरीर में बैठ बताते हैं, क्या बताते हैं? पतित शरीर में बैठकर बताते हैं कि मैं आता ही हूँ पतित शरीर में, पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाने, इसलिए उसका नाम पड़ा पतित पावन। भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं। कितने बड़े बड़े मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर पहले बनाया, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए। कितनी क्लियर बात है, इनमें बाबा की प्रवेशता हुई और गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया। तो जब ज्ञान मिला तब छोड़ा, इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति छोड़ो नहीं कहो, ज्ञान देते जाओ उनको। अनायासी तो छोड़ा, इसलिए कहते हैं ना, रास्ते चलते चलते बाबा मिला। तुमको कोई ने कहा नहीं कि भक्ति नहीं करो, कहा किसी ने? ज्ञान मिला तो अपने आप छूटा। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि फिर से मैं तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। श्री कृष्ण की फिर 8 डिनास्टी चलती है। पहले कहेंगे, पहले क्या कहेंगे कृष्ण को, क्या कहेंगे? प्रिंस ऑफ सतयुग। जैसे कोई राजकुमार होता है, प्रिंस होता है, तो कहते हैं ना प्रिंस ऑफ उदयपुर, प्रिंस ऑफ जोधपुर, ऐसे उसका टाइटल होता है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण को कहेंगे प्रिंस ऑफ सतयुग। फिर बनता है, फिर क्या बनता है? किंग ऑफ सतयुग। पहले होता है प्रिंस ऑफ सतयुग, फिर बनता है किंग ऑफ सतयुग। 8 पीढ़ी उनकी चलती है। उस समय तो दूसरी राजाई होती नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, तो क्या कहेंगे? स्वर्गवासी हुआ। समझते हैं आत्मा और शरीर दोनों गए, दोनों जाते हैं स्वर्ग में। ये पतित शरीर कैसे जाएगा, वो तो यहाँ ही खत्म हो गया। न शरीर गया न आत्मा गई, कोई नहीं गया। लेकिन शरीर तो यहाँ ही छोड़ गए, बाकी गई आत्मा। इसका मतलब पहले नरक में था, आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? फिर तो खुशी की बात है ना, अच्छी बात है। स्वर्ग अब यहाँ है क्या? अभी स्वर्ग है कहाँ जो स्वर्ग में जाएंगे? परंतु समझते नहीं है, कह देते सब ईश्वर का हुकुम है, सुख दुख सब ईश्वर देता है, सब ईश्वर के रूप है। परंतु बाप कहते हैं, इसका जवाब बाप कह देते हैं, लोग कहते हैं सुख दुख सब ईश्वर देता है, सब ईश्वर का ही माया है, ईश्वर की लीला है। तो बाबा क्या जवाब देते हैं उनको, क्या रिप्लाई करते हैं? बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? दे सकता है? लौकिक बाप ही नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा दुखी हो, तो फिर ये तो पारलौकिक बाप सुख का सागर, शांति का सागर, वो कैसे दुख दे सकता है? बाप से बच्चे कब दुख मांगते हैं क्या? बाप तो बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे जाते हैं। कोई पिता शरीर छोड़ता है तो बेटे के नाम से विल करके जाता है, बाकी दुख तो हरेक को कर्म अनुसार मिलता है। बाप कहते हैं कि अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, भगवान से पुत्र दो, धन दो, कुछ नहीं मांगो, अभी ये प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है, फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा? खत्म होने वाला है, तुमने बच्चा मांगा, ना बच्चा बड़ा होगा, ना बच्चे को कुछ मिलेगा। इतना समय ही नहीं है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके, इसलिए ना प्रॉपर्टी मांगो ना बच्चा मांगो। बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम ही नहीं है, विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते हैं कि कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए मांगते रहते हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो विनाश विनाश करते रहते हैं, वो पहले कहते थे अरे ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश की बातें करती है, अब ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान देती है, योग सिखाती है, विनाश की बातें वो लोग करते हैं, ऐसा है ना? कहानी है ना, शेर आया, शेर आया, जब आखिर तो आया और खा गया, तो अचानक होगा ना, बाबा ने कहा एवर रेडी रहो। जैसे नेपाल में देखो एकदम बाढ़ आई, किसी को सोचने का, एक संकल्प करने का भी टाइम नहीं मिला, सब कुछ बह गया, तो इतना भी टाइम मिलने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। सब समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, ये थोड़ा था नेपाल में काल आया वो थोड़ा था नहीं, क्या समझते हैं थोड़ा थोड़ा काल आएगा, ये तो होता ही रहता है। लेकिन तुम कहते हो, तुम क्या कहते हो? लोग कहते हैं अरे ये तो होता ही रहता है, आदि से होता आया है, वो हमेशा से होता आया है, बाढ़ भी आती है, अकाल भी होता है, भूकंप भी होता है, तो होता रहता है। लेकिन तुम क्या कहते हो अभी इसका जवाब, कि वो तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा काल आता रहेगा, लेकिन तुम कहते हो कि अब तो महाकाल आया हुआ है, एकदम सबको ले जाएगा। शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है जो सभी आत्माओं को वापस ले जाएगा, तो शरीर तो जरूर छोड़ना पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो, आत्माओं को पवित्र बनाए फिर वापस ले जाएंगे, ऐसे नहीं ले जाऊंगा, पहले पवित्र बनो। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो क्या होगा? अंत में सजाएं खानी पड़ेगी और ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विथ ऑनर है, उसको स्कॉलरशिप मिलती है, 21 जन्म राज्य पाते हैं, कितना सहज समझाते हैं, बुद्धि में बैठता भी है, लोगों की बुद्धि में बैठता भी है, जब हम बताते हैं तो स्वीकार भी करते हैं, फिर क्या होता है, फिर गुम हो जाता है, बाहर गए खत्म, बाहर का वातावरण असर कर लेता है। किसको भी भक्ति छुड़ानी नहीं है, बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल फिर उसी साधारण तन में आता हूँ, कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ, ये है ऊंच से ऊंच पढ़ाई। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर भारती सतो प्रधान बनता है, और धर्म वालों ने इतना सुख नहीं देखा है तो दुख भी नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि वो लास्ट में आते हैं, थोड़ा सुख भोगते हैं, थोड़ा दुख भोगते हैं, और मच्छरों माफिक चले जाते हैं। बाहर वालों के पास, अभी देखो ये भी एक राज की बात बताई है, बाहर वालों के पास तो पैसा बहुत है, बड़े बड़े देशों के पास, तो गरीब देश को कर्ज देते हैं। उन बिचारों को पता नहीं है ये तो रिटर्न हो रहा है। बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे। कैसे उठेंगे कुंभकर्ण की नींद से? हाय हाय कर उठना पड़ेगा। फिर तुम कहेंगे, क्या कहेंगे, जब हाय हाय कर उठेंगे, तुम्हारी बात को मानेंगे तो क्या कहेंगे? टू लेट। इसलिए बाप कहते बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं, बाबा को आकर कहते हैं कि बाबा अगर हम पूजा नहीं करते तो वो कहते हैं कि ये तो नास्तिक बन गया है। घर में कोई पूजा रखते हैं तो कई समझते मैं हाथ भी ना जोड़ूं, मुझे ज्ञान मिल गया है। नहीं, बाबा कहते ऐसे नहीं करो। बाबा राय देते हैं, क्या राय देते हैं, कि साक्षी होकर बाबा की याद में रहो, थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो, फॉर्मालिटी कर दो। एक होता है दिल से करना, दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, राजी करने के लिए करना, तो उनको भी खुश कर दो। आप उसको खुश करेंगे तब तो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे, पूरा ही शुरू से उसको रिजेक्ट कर देंगे तो आपका कहाँ सुनेंगे, कैसे मानेंगे। अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है, बाहर से भले हाथ जोड़ दो, पूजा कर लो, उनको खुश करो, अंदर में किसको याद करो, शिव बाबा को याद करो। अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा कर दिखाओ तो वो खुश हो जाएंगे। ये कोई पाप का काम तो नहीं है। बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भी जाओ, लौकिक में परिवार में किसी की शादी होती है तो ऐसा डायरेक्ट नहीं कहो कि शादी बर्बादी है, हम बर्बादी में नहीं आएंगे, युक्ति से चलना है। बाप का फरमान है कि अब पतित नहीं बनना है, पवित्र बनने से ही तुम श्री कृष्ण पुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चों, ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। वह है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। ये रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। कहते हैं कि माँ में कम याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई विरला व्यापारी व्यापार करे अर्थात वैकुंठ की बादशाही लेवे, ऐसा व्यापार सब तो नहीं कर सकते। शिव बाबा के साथ पवित्र बन के सब कुछ लेने का सौदा करना सबके बस की बात तो नहीं है। श्रीमत पर चलते रहो, अभी ये लेसन लास्ट, श्रीमत पर चलते रहो। ऐसे भी ना हो पैसे आदि कहां मुफ्त में जाए, कुछ फल नहीं निकले, ऐसी जगह धन नहीं लगाओ जो कोई फल ना निकले। सेवा में लगाओ तो अनेकों का कल्याण हो, तो हमको भी पुण्य मिले फल मिले। घर बार भी संभालना है, बच्चों की पालना भी करनी है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। राय लेनी है कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा बच्ची कहती है कि हम शादी करें, तो बाबा कहते हैं कि शादी करानी ही पड़ेगी क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो। लेकिन बाबा लड़के के लिए मना करते हैं, वो अपने आप करेगा जो करना है। लेकिन लड़की के लिए ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या करें? पहले तो समझाओ उसको, इस रास्ता दिखाओ कि ये रास्ता सही है। नहीं चलती है, नहीं मानती है तो क्या करें? बाप सिर्फ समझाते हैं, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछकर श्रीमत पर चलो। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, इसलिए हर बात बाबा से पूछो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कितनी मीठी मीठी बातें, कितनी बातें, शिक्षाएं दी, व्यवहारिक ज्ञान भी दिया, लक्ष्य भी बताया, ज्ञान भी दिया, सब बातें समझाई। बाबा हर रीति से बहुत सरल तरीके से परिवार में कैसे रहना है, क्या करना है, सब कुछ समझाते हैं। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है, लौकिक से युक्ति से चलना है। दूसरा, इस समय अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं, संगम युग है, अंतिम समय है, कोई बंधनों में फंसना नहीं है, नए बंधन बनाने नहीं है, क्योंकि हमें बंधन मुक्त बनना है। आज का वरदान बहुत सुंदर वरदान है, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। फरमान की पालना होगी तो कोई अरमान रहेगा ही नहीं। ये अरमान सारे क्या है? कलयुगी है अरमान। अमृत वेले से लेकर रात तक की दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं, उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। ये सब फरमान अनुसार चल रहा है, श्रीमत अनुसार चल रहा है। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। अरमान समझते हैं ना? इच्छाएं, व्यर्थ की इच्छाएं, हद की इच्छाएं। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है, तो जरूर कहां न कहां कोई न कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। मैं सफल हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मेरी शान हो जाए, ये अरमान भी बाबा कहते हैं है। माना तुम्हारा कुछ न कुछ फरमान पालन करने में कमी है। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो, इससे माया प्रूफ स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। या व्यक्ति इशारे अपने, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसका क्लेरिफिकेशन है, जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं। किसी को भी फिट किया जाता है ना, भाई ये यहाँ सेवा में कोई नहीं है तो सेवाधारी को फिट किया जाता है। ऐसे अगर किसी के द्वारा कोई भी शक्ति की कमी अनुभव हो तो भी अपने सहयोग से जगह भर दो, जिससे दूसरे की कमी का भी अन्य कोई को अनुभव ना हो। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन, समय प्रमाण उसे सहयोग की देन देना। किसी के कमी का वर्णन नहीं करो, लेकिन उसको सहयोग देकर उसकी कमजोरी को, कमी को भर दो। अच्छा, ओम शांति। ये बताएगी, इसको बोला है।
ओम शांति। विजया बहन जी को निवेदन है, आप मंच पर आ जाएं। और जैसे कि आप सभी को कल बताया ही था कि आज हम अभी क्लास में आदरणीय मोहिनी बहन जी को उनकी 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भोग स्वीकार कराएंगे। आज संदेशी हम सभी के बीच में नहीं है कुछ कारणों से, लेकिन हम सभी वतन में चलेंगे और आदरणीय मोहिनी बहन जी को भोग स्वीकार कराएंगे। हम पूछना चाहते हैं सभा में, ऐसे कौन है जिन्होंने मोहिनी बहन को नहीं देखा? मधुबन की मोहिनी बहन जी, हाथ उठाए। बहुत सारे हैं। मधुबन की मोहिनी बहन जी एक बहुत ही विशेष आत्मा थी। उनका व्यक्तित्व बहुत ही रमणीक और अनेक विशेषताओं की धनी आत्मा थे। और आपने यज्ञ में बहुत एक लंबा अनुभव आपका रहा। आपने प्यारे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, साकार मात पिता की, यज्ञ मात पिता की पालना ली, बहुत लंबा समय तक उनके अंग संग भी रहे। वैसे लौकिक रूप से मोहिनी बहन जी लखनऊ से ज्ञान में निकले थे और उनकी विशेषता थी कि उनका ज्ञान में जो जन्म भी दिव्य दृष्टि से ही हुआ था। पहले पहले सेंटर पर आए, दिव्य दृष्टि से ट्रांस में गए और फिर ज्ञान में चल पड़े, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि ही बहुत बड़ा आकर्षण बन गई और फिर वही उनको वरदान बन गया। तो वो पूरा ही समय संदेश पुत्री का पार्ट भी बजाती रही। हमने उनके द्वारा अनेक वर्षों तक बाबा के संदेश भी सुने और अनेक वर्षों तक वतन के नजारे भी देखे। उसके अलावा भी शुरुआत में जैसे ज्ञान में चले तो समर्पित भी हो गए थोड़े समय में ही, और फिर अनेक सेंटरों पर भी उन्होंने सेवाएं की। यहाँ भी मधुबन में जब से बड़ी दादी जी ने उनको मधुबन में दीदी दादी ने बुला लिया, फिर यहाँ उन्होंने मधुबन राजस्थान आप जानते हो, यहाँ पर थोड़ा सेवाओं का कम सेवाएं हो पाती है जिस तरह का यहाँ का कल्चर है। तो यहाँ उन्होंने संकल्प लेकर के बहुत दृढ़ता से बड़ी मेहनत से मधुबन और मधुबन के आसपास जो भी सेवाएं चलती है दो तीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो सारी सेवाएं उन्होंने उठाई, चाहे सिरोही में कह लो, जालोर में कह लो, राजसमंद में भी कहीं बहुत सारी सेवाएं उन्होंने शुरू की। इसलिए मधुबन जोन भी कहा जाता है उतने सेवा केंद्र को, तो उसका क्रेडिट मोहिनी बहन जी को जाता है। अनेक विशेषताएं, आपकी विशेषता तो ये भी थी कि बहुत मतलब मधुबन में जैसे रहते थे जैसे दादियां थी, तो दादियों के जैसे कराची से तो नहीं आए थे यहाँ पर पार्टीशन के समय, लेकिन मधुबन यहाँ पर भारत में ही ज्ञान लेकर के भी आपने इतना अपनी विशेषताओं से अपने दिव्य गुणों से ऐसा दादियों के समान पूरे ब्राह्मण परिवार में स्थान प्राप्त किया कि सबकी लाडली भी थी प्यारे बाप दादा और दादियों की। और विशेषताएं तो ऐसी थी कि जहाँ कभी कोई ऐसा परिस्थिति भी होती थी तो प्यारे बाप दादा और दादी जी उनको सेंटरों पर उन परिस्थितियों को संभालने के लिए भी बड़े विश्वास से भेजते थे और वो उन चीजों को व्यवस्थित करके आ जाते थे, क्योंकि इतना बड़ा कार्य है, इतना बड़ा यज्ञ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातें होती ही थी। तो आज उनको याद करने का दिन है। मैं दोनों बहनों को भी कहूंगा कि उनके स्मृतियों में कोई उनकी याद होंगी तो जरूर दो दो शब्द उनके बारे में सुनाए, फिर हम भोग लगाएंगे।
ओम शांति। आज हमारी अति प्यारी परम आदरणीय मोहिनी दीदी जी के स्मृति का दिवस है। जैसे ही कल दीदी जी ने कहा था, शशि दीदी जी ने, कि कल भोग लगाना है, उनके साथ का कुछ अनुभव शेयर करना है, तो सच में मुझे उनके शुरू से लेके उनके साथ के बातें याद आ रही थी। वो बातें तो अभी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन ये हमने अनुभव किया यज्ञ में, हर एक का अपना अलौकिक यूनिक रोल है। मोहिनी दीदी जी का भी एक बड़ा ही यूनिक रोल रहा, जैसे भैया ने बताया कि कराची से नहीं आई थी, दादियों के संग नहीं थी, परंतु दादियों से कम नहीं थी, सभी दादियों की बहुत ही लाडली रही, क्योंकि मम्मा बाबा की भी लाडली रही, खास मम्मा के अंग संग रह करके रमणीकता से मम्मा को भी बड़ा रिझाती थी। बहुत सारे ऐसे अनुभव हमने उनसे ही सुने थे। और दादियों के संग, अब बड़ों के संग उनके अंग संग रहना, उनसे हर वक्त जागरूकता से हर चीज को वो जैसे चाहते वैसे करना, ये आसान नहीं, देखना आसान है, परंतु संग रह करके हर बात में, हर कारोबार में साथी बन के रहना और उसको सही ढंग से बड़ों के मुताबिक करना खेल नहीं होता है, परंतु दीदी ने ये बहुत अच्छा रोल अदा किया बड़ी दादी जी के संग। हर कारोबार को दादी जी के बाद भी उन्होंने यज्ञ को उसी तरह से बहुत ही एक रेस्पॉन्सिबिलिटी से उसको संभाला। और दीदी की विशेषता ये थी कि दीदी लवफुल एंड लवफुल दोनों का बैलेंस था। बहुत ही स्नेही ऐसी स्नेही थी कि सोचते कि इनके जैसा स्नेही शायद दूसरा नहीं होगा, परंतु इतनी ही लवफुली भी थी। रमणीकता का भी ऐसा ही रोल था, तो गंभीरता का भी ऐसा ही रोल था। तो उनकी इतनी विशेषता और वो अपनी विशेषताओं से दादियों के समान बन गई, क्योंकि हमने जो देखा दादियों का जैसे समान होता था सभी बड़ी बहनें होती थी, परंतु दीदी का भी दादी के संग संग समान होता था। तो ये समान प्राप्त करना या समान करने वाले वो खुशी से करना, ये ऐसे ही नहीं होता। उनके व्यवहार, उनका कार्य, उनकी जो दादियों के संग रह करके करने के कारोबार, ये समान करा देते। तो इस तरह से दादियों के साथ साथ समानता का सम्मान मोहिनी दीदी को प्राप्त होते हुए हमने ये अनुभव किया। और वो दिव्य संदेशी थी, तो बहुत ही अच्छा संदेश का रोल चलता था। और मधु निवासियों को तो बहुत ही आनंद है वो समय का, श्री कृष्ण का खेल पाल की जैसा यहाँ दीदी का जो रोल चलता था वो कहीं अन्य कहीं भी जगह उस तरह से नहीं चलता था। चलता बेशक है परंतु नहीं। तो इस तरह से हमारी आदरणीय दीदी जी का यूनिक रोल चला। मेरा भी एक सौभाग्य है क्योंकि उन्होंने ही मुझे इधर मधुवन के इर्द गिर्द सेवा के निमित्त बनाया था। दादी जी ने बनाया था परंतु सारा हैंडलिंग मोहिनी दीदी जी का था, क्योंकि कहते हैं ना दिए तले अंधेरा, तो मधुवन के आसपास सेवाएं नहीं थी। एक जालोर सेंटर, एक सिरोही सेंटर था। सिरोही की दीदियों ने बहुत मेहनत किया और अभी भी करते हैं। हेड ऑफिस का सारा कारोबार होने के कारण वहाँ बहुत मेहनत करना पड़ता, लेकिन जैसे जैसे वो एक था और जालोर का वो भी बंद कर दिया था। इस तरह से तो दादी की इच्छा थी कि यहाँ आसपास जब तक सेवाएं नहीं होती तब तक ये पोजीशन कम नहीं होता। तो दादी के साथ मोहिनी दीदी जी ने मिल करके, दीदी ने जिम्मेवारी उठाई, जैसे कहते हैं ना पान का बीड़ा उठाया, उन्होंने ये जिम्मेवारी उठा के सेवाएं शुरू की। बिल्कुल कठोर धरनी, जैसे कि वहाँ एक भी ज्ञान सुनने वाले नहीं। ऐसी जगह बहनों को, मुझे खुद ऐसे स्थानों में जाके सेवा करने का मौका मिला। बहुत ही अपोजिशन होता था, परंतु मैं खुद तंग आके लौट के आती थी तो दादी का स्नेह प्यार और दीदी का सहयोग, दीदी का एक छत्र छाया, तो वो सेवा करते थे। और ऐसे स्थान में निमित्त बन के दीदी ने सेवा करा के चारों तरफ आज हरियाली हो गई, बहुत सारे सेंटर हो गए, एक बड़ा जोन बन गया। और दीदी की विशेषता से, दीदी यहाँ के मधुवन जोन की इंचार्ज तो थी यज्ञ के कारोबार को संभालते हुए, साथ साथ जब यूपी जोन दादी जी गंगे दादी जी चले गए तो वहाँ के लोगों ने की भी चाहना यही थी, तो यूपी जोन की भी वो इंचार्ज बन के रही। और साथ साथ बेलगांव जोन कर्नाटक की भी वो जोन इंचार्ज बन के निमित्त बन के सेवा किया। तो ऐसे सारे ब्राह्मण परिवार की वो बहुत ही प्यारी लाडली आदरणीय रही और उनकी दुआओं से हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी दीदी को हम दिल से शशत नमन करते हुए आज भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति। Thank you.
अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
तेरी याद।